आज कल
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आतंकवादी गुट दाइश से मुकाबले में इराकी और सीरियाई सेना व स्वयंसेवी बलों को मिलने वाली सफलताओं और इस आतंकवादी गुट को मिलने वाली निरंतर विफलताओं और सीरिया में होने वाले परिवर्तनों के बाद पश्चिमी सरकारों के दृष्टिकोणों में बदलाव की चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
इससे पहले के कार्यक्रम में हमने आतंकी गुट दाइश की पराजय और सीरिया में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में पश्चिमी सरकारों के दृष्टिकोणों में बदलाव की चर्चा की थी। सीरिया और इराक में इन देशों की सेनाओं एवं स्वयंसेवी बलों को जो सफलताएं मिली हैं उनसे पूरा समीकरण प्रतिरोध के हित में बदल गया है। जो देश व सरकारें तकफीरी आतंकवादी गुटों का समर्थन कर रही थीं उन्होंने भी इन सफलताओं को देखकर राजनीतिक मंच पर अपना दृष्टिकोण बदल लिया। वास्तव में डेमोक्रेसी और आज़ादी की आड़ में इन आतंकी गुटों के समर्थन पर आधारित जो नीति थी उसका लक्ष्य सीरिया में इस देश के राष्ट्रपति बशार असद की कानूनी सरकार को गिराना और इराकी सरकार को कमज़ोर करना था, लेकिन अंत में इस नीति की उपयोगिता समाप्त हो गई।
तकफीरी आतंकवादी गुटों की समर्थक सरकारों के पास इन गुटों को अपने ठिकानों से पीछे ढकेलने में इराकी और सीरियाई सैनिकों एवं स्वयंसेवी बलों को मिलने वाली सफलता को स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। वर्ष 2014 में आतंकवादी गुट दाइश ने जब इराक के मुसिल नगर पर कब्जा कर लिया तो दाइश के समर्थकों ने अमेरिका की अगुवाई में उससे मुकाबले के लिए तथा कथित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन में यूरोप, प्रशांत महासागर और मध्य पूर्व की बहुत सी सरकारें शामिल हैं, परंतु ये गठबंधन दाइश को आघात पहुंचाने से अधिक इस प्रयास में है कि किस तरह इस गुट का अमेरिका और उसके क्षेत्रीय घटकों विशेषकर सऊदी अरब और ज़ायोनी शासन की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देशन करे।
ये गठबंधन चाहता था कि दाइश की सहायता व समर्थन से इराक व सीरिया की भूमि के एक भाग को इन देशों से अलग करके उन लक्ष्यों को प्राप्त कर ले जिसे वर्ष 2003 में इराक के अधिग्रहण के दौरान अमरीका भी प्राप्त न कर सका था। इसी कारण दाइश द्वारा मोसुल पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका के खुफिया व सुरक्षा अधिकारी दाइश से मुकाबले के बारे में कहते थे कि मोसुल को दाइश से वापस लेने में 10 साल से अधिक का समय लगेगा। वास्तव में अमेरिका और उसके यूरोपीय व क्षेत्रीय घटकों का कहना था कि दाइश 10 वर्ष से अधिक समय तक रहेगा और इस प्रकार की बातें करके वे आतंकी गुट दाइश की शक्ति को इराकी सेना और स्वयंसेवी बलों के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करते थे। लेकिन इराकी सेना और इस देश के स्वयंसेवी बलों और ईरान, सीरिया, लेबनान और रूस में उनके समर्थकों व मित्रों का संकल्प व शक्ति उससे भी बहुत अधिक है जितना दाइश के समर्थक उसके लिए बयान करते थे।
आतंकवादी गुट दाइश द्वारा इराक के मुसिल नगर पर कब्जा कर लेने के बाद ईरान, सीरिया, रूस और लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन ने उससे मुकाबले के लिए एक गठबंधन बनाया। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इराक की सरकार को सैनिक परामर्श की सहायता देकर दर्शा दिया कि विश्व में आतंकवाद से मुकाबले के लिए कौन सा देश दृढ़ संकल्प है। रोचक बात यह है कि पश्चिमी देश ईरान पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाते हैं और तेहरान पर निराधार आरोप मढ़ते हैं। इन समस्त दावों व आरोपों के खिलाफ ईरान ने इराकी सरकार की जो सहायता की उससे व्यवहारिक रूप से इराक में दाइश की प्रगति रुक गई और ये वो बिंदु है जिसे इराक के सैनिक व राजनीतिक अधिकारियों ने बारंबार स्वीकार किया है।
आतंकी गुट दाइश केवल क्षेत्र का राजनीतिक व भौगोलिक मानचित्र परिवर्तित करने के लिए नहीं आया था बल्कि उसका अंतिम लक्ष्य ईरान में प्रभाव जमा कर अशांति फैलाना था। जब दाइश ने सीरिया और इराक में अपनी गतिविधियां आरंभ की तो उस समय दाइश और जो शक्तियां उसका समर्थन कर रही थीं उन्हें इस बात में संदेह नहीं था कि कोई भी शक्ति दाइश को पराजित नहीं कर सकती। उनके अनुसार एक वो समय था जब उन क्षेत्रों पर उस्मानी और बनी अब्बास के शासक शासन किया करते थे और अब दोबारा इतिहास दोहराया जाने वाला है। इसी आधार पर रियाज और अंकारा की ओर से आतंकी गुट दाइश की विशेष सहायता की जाती थी।
वर्ष 2014 में दाइश द्वारा इराक के मुसिल नगर पर कब्जे के दौरान तुर्की ने बड़ी सरलता से अपने कूटनीतिकों और नागरिकों को मुसिल से बाहर निकाल लिया और दाइश के सामने अपने सैनिक दल को करकुक प्रांत के पश्चिम में स्थित बाशिका की ओर रवाना किया। और जब इराकी अधिकारियों ने तुर्की के इस कार्य पर आपत्ति जताई तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र से नहीं जाएगा। तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री के सहायक नोमान कुर्तलमुश ने इराकी अधिकारियों की आपत्ति के जवाब में कहा कि उस्मानी शासन की समाप्ति के अंतिम दिनों में होने वाला लुजान समझौता हमें अपनी भूमि में प्रवेश की अनुमति देता है। उस समय सऊदी नरेश के बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने इराक में दाइश के तेजी से किए जाने वाले हमलों के दौरान कहा था कि दाइश एक सुन्नी आंदोलन है जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इन बातों से हटकर देखें तो बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं जो इस बात के सूचक हैं कि सऊदी अरब और तुर्की के खुफिया तंत्रों के दाइश से विस्तृत संबंध हैं।
मुसिल के 3 वर्षों तक दाइश के कब्जे में रहने के बाद भी अमेरिका, यूरोपीय सरकारें और दाइश के समर्थक क्षेत्र के कुछ देश भी न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके बल्कि वे इस बात के साक्षी हैं कि शक्ति का संतुलन तकफीरी आतंकियों के मुकाबले में प्रतिरोध के हित में परिवर्तित हो गया है। सीरिया व इराक में इन देशों की सेनाओं के साथ मिलकर स्वयंसेवी बलों ने भी दाइश से मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब आतंकवादी गुट दाइश से मुकाबले में मुसिल के पश्चिम में इस गुट का गढ़ तबाह हो गया तो वो समझ गया कि वो किसी भी स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकता और अगर वो मुकाबला करना चाहेगा तो उसे बहुत अधिक जानी क्षति उठानी पड़ेगी। मुसिल के पश्चिम में बंदी बना लिए गए दाइश का एक कमांडर स्वयंसेवी बलों की शक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है कि अगर हशदुशाबी या स्वयंसेवी बल न होता तो असंभव था कि मुसिल में या दूसरे स्थानों पर 1 मिलीमीटर भूमि भी हमसे वापस ले ली जाती।
इराक और सीरिया में स्वयंसेवी बल बड़ी बहादुरी व साहस के साथ लड़ रहे हैं और वो हार जीत को नहीं पहचानते। ऐसे बल के सामने आतंकवादी गुट दाइश के पास आत्मसमर्पण कर देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आतंकवादी गुट दाइश से मुकाबले में ईमान और ऊंचे मनोबल की भावना उन लोगों में बहुत मजबूत है जो ईरान, अफगानिस्तान और लेबनान से दाइश के मुकाबले के लिए इराक और सीरिया गए हैं। प्रतीत ये हो रहा है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय घटक जिन्होंने बहुत पैसा खर्च करके दाइश को बनाया है इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आसानी से दाइश को किनारे लगा दिया जाए। न आतंकवादी गुट दाइश के नेता और न ही इस गुट को बनाने में प्रभावी भूमिका निभाने वाले देशों के खुफिया तंत्र व सरकारें इस बात को पसंद करेंगी कि दाइश की पूरी तरह सैनिक पराजय हो और वो समाप्त हो जाए।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि दाइश के पीछे हटने का अर्थ उसका खत्म हो जाना नहीं है। राजनीतिक टीकाकार इस आतंकवादी गुट की भावी चाल के संबंध में विभिन्न विचार पेश कर रहे हैं। साथ ही इस आतंकवादी गुट ने पिछले 3 वर्षों के दौरान इराक व सीरिया के भविष्य को एक दूसरे से जोड़ दिया है। सीरिया में तकफीरी गुटों का जो भी भविष्य होगा उसका प्रभाव इराक के भविष्य पर भी पड़ेगा। सीरिया और इराक में दाइश के कब्जे में जो एक क्षेत्र थे उनके निकल जाने के बाद ये आतंकवादी गुट क्या करेगा, इसकी चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करेंगे।